نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم توحید کے مسائل کتاب کو آج باضابطہ طور پہ شروع کریں گے. ابھی تک جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کیے وہ توحید اور عقیدے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اہم تھے, لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید, اردو میں اس کا نام ہے توحید کے مسائل. اصل میں یہ ایک سیریز ہے تفہیم السنہ. تفہیم کہتے ہیں فہم حاصل کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. محمد اقبال کیلانی صاحب کی یہ ایک سیریز ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ کے اس کورس کے لیے چوز کرنے کی وجہ کیا ہے, یہ چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. تو اس کی وجہ اس کتاب کا اسلوب ہے. عموماً جب کتابیں بازار میں ہمیں ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ عقیدے اور سنت کے موضوع پہ, تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات جو کی جائے اس کا ساتھ ہی ساتھ حوالہ بھی ہو. بعض دفعہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضاحت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے, اور اس حدیث میں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے اس کو مصنف نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آج آپ اس کتاب کو شروع کریں گے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کو اسی کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا. اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ جب یہ کتاب پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے یا اس پہ ہم ایک بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ساری تمہید سے انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ خیال نکل جانا چاہیے جو کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, کس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ فقہ میں کس کی فقہ ہوگی, تو در حقیقت ہم نے اس کورس میں چار کتابوں کو چوز کیا ہے جو کسی ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی ہیں, اسی میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور اس میں فقہ کس کی ہے؟ سنت کی. تفہیم السنہ ہے جس کو سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 95 ہے. اس سے پہلے مصنف نے اس موضوع پہ بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے. ترتیب میں تو یہ پہلے ہے لیکن میں نے سوچا کہ ہم پہلے اس کتاب کے باقاعدہ آغاز سے شروع کرتے ہیں اور جو باتیں رہ گئیں اس کو کتاب کے اینڈ پہ دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, آپ سب کو اس وقت اپنی خوش قسمتی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. سب سے پیاری ذات, اس کے ایک ہونے کی بات. توحید پہ ہم بات کر چکے وحدہ سے. اللہ کی ذات ایک ہے, قل ھو اللہ احد. دن میں کئی بار نمازوں میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے ایک ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے بہت مختصر اور جامع انداز میں اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی. شروع کرتے ہیں. نیت کے مسائل. کسی بھی حدیث کی کتاب کو جب آپ شروع کریں گے تو عموماً اس میں سب سے پہلا ٹاپک نیت کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو پھر ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں. اس کو شروع کرتے وقت میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چند سیکنڈ دوں گی کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کیوں آئے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات کو سمجھنے اور اس کی معرفت کو لے کر اس کے حکموں پہ چلنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے. इसके अलावा अगर कोई नियत है हमारी यहाँ आके बैठने की, तो फिर समझ लीजिए कि आने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो अल्लाह के नबी की महफिलों में आके बैठते भी थे, चले जाते थे उनको सिवाय तनकीद के और नक्स के और आपकी गलतियाँ चुनने के कुछ नहीं मिलता था। तो अल्लाह ना करे कि हम इल्म की महफिल से ऐसी ही गंदी चीज़ें लेके उठें कि जिससे हम अपने लिए तो क्या, दूसरे के लिए तो क्या, अपने ही लिए नुकसान खड़ा कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु अन्हु से मिलती है। अन उमर इब्न अल ख़त्ताब क़ाल समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइ मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यन्किहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। तर्जमा क्या है हदीस का? आमाल का दारोमदार नियतों पर है, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। पस मुहाजिर ने जिस मकसद के लिए हिजरत की उसी चीज़ के लिए समझी जाएगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। बहुत मुख्तसर हदीस है लेकिन एक इंसान की सारी ज़िंदगी का खुलासा है। हर इंसान जिस नीयत से कोई काम करेगा अल्लाह के हाँ वो वैसा ही लिखा जाएगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक शख्स ने किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की। उस औरत का नाम इमराउल कैस था। सहाबे कराम में उस शख्स का नाम ही मुहाजिर इमराउल कैस पड़ गया कि इसने इस औरत के लिए हिजरत की। देखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से हिजरत करते हैं, बहुत कुछ छोड़ते हैं और बहुत कुछ अपनाते हैं। हमारा किसी काम को करने का जो असल मकसद होगा हमारे लिए वही अजर है। हिजरत का लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा वसीउल मानी है, इंशाल्लाह किसी मौके पे हम इसको देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम सब के अमल के मुताबिक गुनाहों को छोड़ना भी हिजरत है। अगर हम सब इस कोर्स में बैठे हैं, इस कोर्स के लिए आए और यहाँ बैठ रहे हैं, तो एक नियत कर लीजिए आज ही कि अल्लाह मैंने इस मुख्तसर से वक्त में अपने गुनाहों से हिजरत करनी है, अपनी बुरी आदत को छोड़ना है, अपने अंदर से वो सारी नेगेटिव चीज़ें निकाल देनी है जो आज तक नहीं निकाल सकी। इंशाल्लाह जब ये नियत लेके आएंगे हर दिन के बाद अपना जायज़ा लेंगे कि मैंने अपने आप को कितना पाक किया, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगली रिवायत हज़रत अबू उबैदा बिन उमर बिन अम्मार बिन जासिर रदी अल्लाहु अन्हो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अम्मार बिन जासिर रदी अल्लाहु अन्हो को मुशरिकों ने पकड़ लिया और उस वक्त तक ना छोड़ा, यानी सज़ा देते रहे जब तक उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली ना दी और इनके माबूदों का भलाई से तذکرہ ना किया। जब हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने पूछा क्या हुआ? अम्मार ने अर्ज़ किया बहुत बुरा हुआ ए अल्लाह के रसूल, मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ा गया जब तक मैंने आपके बारे में ना ज़ेबा कलिमात ना कहे और इनके माबूदों की तारीफ़ ना की। आपने पूछा अपने दिल की क्या कैफियत महसूस करते हो? अम्मार ने अर्ज़ किया ईमान पर पूरी तरह मुतमईन है। तब आपने फरमाया अगर ये मुशरिक दोबारा ऐसा ही करें तो तू भी ऐसा ही करना। इसे बहकी ने रिवायत किया। ये एक वाक्या था जो अम्मार बिन जासिर के साथ पेश आया कि लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह के नबी के बारे में कुछ ऐसी बात कहना पड़ी जिसकी गवाही उनका दिल नहीं दे रहा था, और दिल में मलाल था कि ये मैंने क्या किया, जान बचा ली और अल्लाह के नबी के बारे में बात कर दी। چنانچہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کو تسلی دی کہ تیرے دل میں کیا تھا. اور اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ وَمَنْ أُكْرِهَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ, کہ جس کو مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک بندہ کام کرتا ہے, دوسرا بندہ بھی بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے, لیکن ایک کو اس کے کام کا بہت اجر مل جائے اور دوسرے کو کم ملے. مثلاً ہم سب یہاں بیٹھے, آج ہم سب یہاں آئے, بظاہر ہم سب ایک ہی ماحول میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہمارے اجر مختلف ہوں گے. کوئی بہت ساری مشکلوں میں سے نکل کے آیا, کسی نے اپنے بہت سارے پلان چھوڑے, اور کوئی بالکل گھر میں فارغ تھا اور وہ آ گیا. کوئی اتنی زیادہ تڑپ لے کر آیا کہ اس کو لگا کہ بس میں نے تو وقت سے پہلے پہنچنا ہے. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, اگر 10 بجے کی بجائے 10:15 بھی پہنچ گئے تو خیر ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے اعمال کو بدل دیتی ہیں, حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کوئی جنت میں جانے کے قابل بن جاتے ہیں اور کوئی جہنم میں جانے کے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ملے گا. تیسری روایت اسی باب کی, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم, رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اسی طرح اگلی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا, لیکن اس کی آنکھوں پر نیند اس قدر غالب آ گئی کہ صبح ہو گئی, تو اسے اس کی نیت کا ثواب مل جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ شمار ہوگی. نسائی کی روایت ہے. کتنا پیارا کرائیٹیرین مل گیا ہم کو, لیکن پھر اس میں یاد رکھیے اخلاص شرط ہے. یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہے اور 2 بجے کے قریب سوئے اور کہا اچھا چلو میں تہجد پڑھوں گی. جب آپ سارا دن نہیں سوتے اور رات 2 بجے تک جاگتے ہیں تو بستر پہ لیٹیں گے, پھر تو تہجد تو دور کی بات ہے, آپ کی تو فجر کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کون کس نیت سے کام کرتا ہے, لیکن اگر واقعی نیت ہے اور اللہ نے آپ کو سلا دیا, غم ہے دل میں, حسرت ہے, لیکن انشاء اللہ تعالیٰ اجر ملے گا. اس بات کو سنتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوا؟ مجھے تو ایسے لگا کہ اللہ کی ذات میرے اتنے قریب ہے. یہی تو بات ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے کیا اٹھتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں یہ بات کہی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو اس قربت کا یہ بھی ایک عملی مظاہرہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے اور اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. اور آپ کبھی آزما کے دیکھیں, آزمانا چاہتے ہیں؟ آج رات سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ بیٹھیں, اپنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس وقت کوئی ایک خاص وقت سوچیں رات کا. آج کل آپ کو پتا ہے کہ فجر اتنی جلدی ہوتی ہے, 3:15 بجے تو فجر شروع ہوتی ہے. آپ کہہ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج مجھے 2:45 پہ اٹھا دینا. ایسا ڈھونڈیے ٹائم کہ جو واقعی بالکل انیوژول ہو, منٹ کے ساتھ, کہ بس اللہ تعالیٰ میں آج 2:45 بجے اٹھ جاؤں گی اور وضو کر کے 2 نفل پڑھوں گی اور پھر فجر پڑھوں گی, آپ نے مجھے اٹھانا ہے. بس اب کوئی الارم نہ لگائیں اور آپ سو جائیں. پھر کل شیئر کیجئے گا جنہوں نے یہ تجربہ کیا, کریں گے؟ اپنے گروپس میں شیئر کیجئے گا اس بات کو, ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ. فضل التوحید, توحید کی فضیلت. कलमे तौहीद का इकरार दीन इस्लाम का सबसे बुनियादी रुकन है। इसकी दलील में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो से एक रिवायत जो हम तक पहुंची, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मास रज़ी अल्लाहु अन्हो को हाकिम यमन बनाकर भेजा, यानी यकम के यमन एक शहर था, वहाँ ये हाकिम बन के गए तो फरमाया, लोगों को पहले ला इलाह इल्लल्लाह और फिर ये कि यानी मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी तरफ दावत देना। अगर वो मान लें तो फिर इन्हें बताना कि अल्लाह ने हर दिन रात में इन पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इसको मान लें तो फिर इनको बताना कि अल्लाह ताला ने इनके मालों पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो इनके मालदारों से वसूल की जाएगी और इनके फ़ुकरा को दी जाएगी। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। इस एक हदीस से बहुत सारे अमल के नुक्ते हमारे सामने आते हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है कि जब अल्लाह के नबी किसी को हुक्मरान बनाकर कहीं भेजते थे तो नसीहत करते थे। इस पे आज के दौर में अमल ऐसे हो सकता है कि आज के दौर में जो लोग हुकूमत के लेवल पे नॉमिनेट किए जाते हैं, सदर हों या वज़ीर हों या उससे भी ऊपर के या नीचे के लोग हों, उनकी दीनी रहनुमाई का सामान ज़रूर मुकर्रर करना चाहिए। उस दौर में तो अल्लाह के नबी ख़ुद मौजूद थे तो आप लोगों को नसीहत करते थे। आज के दौर में मेरी एक कमज़ोर सी राय है कि अगर हुकूमत के ओहदे तक पहुंचने वालों के लिए अल्लाह के नबी की अहदीस का कुछ पोर्शन लाजिम कर दिया जाए, ख़ास तौर पे जिसका ताल्लुक इमामत से और खिलाफत से और लोगों के मामलात से है, तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात हमें इस हदीस से जो पता चली वो क्या है कि आमाल में सबसे पहला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है, ज़ुबान से इकरार लेकिन उसकी शाखें 70 के करीब पहुंच जाती हैं। तो लिहाजा किसी को तबलीग करें तो सबसे पहली चीज़ उसको तौहीद सिखानी है। ये तीसरा नुक्ता हमें इस हदीस से मिला। हम अमूमन तबलीग के नाम पे नेल पॉलिश से बात शुरू करते हैं और लोग वो मसला सुन के वापस ही नहीं आते। हम ऐसे बड़े बड़े मसले बयान करते हैं जिसका कभी शायद किसी को मामला ही पेश ना आए, हालांकि किसी को अगर बुलाना है तो सबसे पहले उसको अल्लाह की दावत दें, फिर अल्लाह के नबी की दावत दें। जब ये दो चीज़ें पक्की हो जाएं फिर नमाज की बात, नमाज पक्की हो जाए फिर ज़कात की बात। फिर इससे ये भी पता चलता है कि जो इंसान पहली सीढ़ी पे ना चढ़े तो उसकी दूसरी चीज़ें भी बेकार हो जाती हैं। मसलन कोई तौहीद नहीं मानता, अल्लाह को एक नहीं मानता, तो फिर बाकी कामों की बात तो अलग है। अगली बात, गैर मुस्लिम कलमा तौहीद का इकरार कर ले तो इसे कत्ल करना मना है, यानी इतना बाबरकत कलमा है ये कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह कि गैर मुस्लिम इकरार ही कर ले, दिल से नहीं माना मानता हमें उसकी परवाह नहीं, ज़ुबान से उसने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। इसकी दलील में सही मुस्लिम की एक रिवायत हज़रत उसामा बिन जैद रदी अल्लाहु अन्हु की है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें एक लश्कर में भेजा, हरकात ये गाँव का नाम था। कहते हैं हरकात में हमने जुहैना ये कबीले का नाम था, जुहैना से सुबह के वक्त जंग की, एक आदमी से मेरा सामना हुआ तो इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा लेकिन मैंने उसे बर्छी से मार डाला, यानी ये समझे कि काफिर है और जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा है। ऐसे ही ना, जैसे कोई पुलिस को देख के कोई शख्स कहे नहीं मैं चोरी से तौबा करता हूँ तो पुलिस मैन कहेगा ना कि इसलिए तौबा कर रहे हो कि मैं सामने आ गया हूँ। तो किसी जंग में इन्होंने देखा, इनको पता था ये शख्स काफिर है, देर से सुन मतलब कुछ दिन के बाद देखा होगा या मिले होंगे, इन्होंने समझा इसने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा और इन्होंने उसको मार दिया। बाद में मेरे दिल में तशवीश पैदा हुई कि मैंने गलत किया या सही, तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया। आपने फरमाया क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तूने उसे कत्ल कर दिया? यानी आपको हैरत हुई कि कलेमा सुन के भी तूने कत्ल किया? मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, इसने हथियार के डर से कलमा पढ़ा था। क्योंकि ग़ालिब गुमान तो यही लग रहा था ना। आपने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था कि तुझे पता चल गया कि उसने खलूसे दिल से पढ़ा था कि नहीं। फिर बार बार आप यही बात इरशाद फरमाते रहे, यहाँ तक कि मैंने आरजू की कि काश मैं आज के रोज़ मुसलमान हुआ होता। क्या मतलब है इस पूरी बात में? आप बहुत सारी चीज़ों का अपने लिए देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर भेजा करते थे। मुसलमान अपने दिफा के लिए कुछ ऐसे लश्कर या कुछ ऐसी तैयारियां करे तो ये एक इंतहाई फितरी बात है। दूसरी बात इससे पता चलती है कि सुबह के वक्त लड़ाई के लिए निकले, यानी सुबह का जो वक्त होता है वो इंसान के लिए बहुत बाबरकत वक्त होता है। फिर अगली बात पता चली कि सहाबा कराम भी गैब नहीं जानते थे। आज अफसोस की बात है कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि नबियों को तो छोड़ दीजिए, आम इंसानों में से कई कई ऐसे बुज़ुर्गों को वो गैब का जानने वाला कहते हैं। उनके ख्याल में तो उनके बुज़ुर्ग या पीर साहब भी दिलों के भेद जान लेते हैं जब कोई उनके पास आता है। नहीं, सहाबा कराम भी नहीं जानते थे। फिर अगली बात इस हदीस से पता चलती है कि सहाबी से भी गलती हो सकती है। अल्लाह के चुने हुए लोग थे लेकिन बशर्त थे। इंसान का मतलब ही यह है कि जो गलती करे। फिर अगली बात इससे पता चलती है कि जो काम कर लिया उसको छुपाया नहीं, बल्कि दिल का गिल्ट दूर करने के लिए अल्लाह के नबी के सामने बात पेश की। इससे पता चलता है कि कभी अगर हमें किसी काम पे नॉमिनेट किया जाए और वो काम हम सही ना करें या हमसे कोई गलती हो जाए तो बता देना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हल है। बाज़ दफ़ा हम इस डर से बताते नहीं कि डांट पड़ेगी या लोग सोचेंगे कि हमने ये काम नहीं किया, और दिल में इतना ग्रज रखते हैं कि हमारे चेहरे से भी वो चीज़ झलकने लगती है और उसकी वजह से दूसरा काम ख़राब होता है। फिर अगली बात इससे पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बारे में कितना अच्छा गुमान रखते थे। अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि अल्लाह के नबी का किरदार किस तरह का बना के पेश किया जाता है। ऐसे नहीं लगता कि आपने दीन तलवार के ज़रिए से फैलाया, लेकिन आप देखिए कि आप क्या कह रहे हैं कि तूने उसको क्यों कत्ल किया। फिर इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को एहसास दिलाने का अंदाज़ भी समझ में आता है कि बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हम होते हैं ना, किसी एक बात को कहते हैं फिर चार बातें और भी कहते हैं, पहले ये कहते फिर कुछ और कहते फिर इधर की सुनाते उधर की सुनाते। नहीं, एक ही बात की तकरार, उससे क्या फ़ायदा होता है कि सामने वाले बंदे को सोचने का मौका मिलता है। मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगी। मसलन जैसे छोटा बच्चा है आपके घर में, कोई गलत काम करता है, अब आप उसको देख के देखते अपने कहते हैं, अब माएँ तो बड़े चीख के कहती हैं ना, मैं वैसे तो नहीं कह सकती लेकिन अमूमन जो अंदाज़ होता है, ये क्या किया, ये ख़राब कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी। हाँ, अब ये एक अंदाज़ है। आप सोचे ज़रा, आप बच्ची हैं या आप बच्चे हैं छोटा सा, और आपने एक गलत काम किया, पहले ही आपका मासूम सा दिल डर रहा है और ऊपर से आपकी माँ आके ये बातें जुमले शुरू हो गई, ये क्या किया, क्यों करना, ये सब। एक ये जुमला है, और दूसरी तरफ मसलन बच्चे ने गलत काम किया तो आप बच्चे को देख के कहते, बेटा आपने ये क्या किया, बेटा आपने ये क्या किया, बेटा आपने ये क्या किया। बताइए दोनों में से किसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, पहली बात का कि दूसरी का? दूसरी का पड़ेगा ना। तो कम लफ्ज़ों में एक ही बात को अगर आप दोहरा देते हैं तो वो दूसरे को सोचने पे मायल करती है। और ये जो बात इन्होंने कही ना कि काश मैं आज मुसलमान होता, इससे मुराद क्या है कि मेरा ये गुनाह इस्लाम से पहले का गुनाह होता और वो माफ़ हो जाता। इससे ये बात पता चलती है कि इस्लाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। जिस तरह कबूले इस्लाम माजी के गुनाहों को माफ़ कर देता है ना, इसी तरह बाज़ दफ़ा हम लोग होते तो नाम के मुसलमान हैं लेकिन शौरी इस्लाम नहीं होता। तो उस सूरत में भी इंसान जब तौबा करता है, अल्लाह की किताब की तरफ आता है, उसको अपनी बहुत सारी खामियों का पता चलता है। बाज़ दफ़ा नींद नहीं आती, बाज़ दफ़ा गम लगता है कि मैं कहाँ गुजार गई ज़िंदगी। तो उस वक्त अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं ना कि अल्लाह कल तक तो पता ही नहीं था, अब तेरी किताब से जुड़े हैं, अब पता चल गया ये बुरा है, तू माफ़ कर दे, तो इंशाल्लाह वो रहमत करने वाला रब हमारे साथ भी वही मामला करेगा जो किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लाने वाले के लिए करता है।